नमस्कार भारत, आज है 16 अक्टूबर दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का एक महीने में पांचवा दौरा, गुजरात गौरव महासम्मेलन में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित।
भाजपा जो है गुजरात में खासी विकट समस्याओं का सामना कर रही है और उनके पास तुरंत का इक्का सिर्फ एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी।
आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रास्ते पर है।
जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक होते हैं उनके कोई अपने आंकड़े नहीं होते, वो जो आंकड़े लेते हैं वो सरकार के आंकड़े लेते हैं।
सुनिएगा गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस को भारी जीत दिलाने वाले सुनील जाखड़ से खास बातचीत, होगी पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंच रहे हैं, वहां वो गुजरात गौरव यात्रा में लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। गुजरात सरकार का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है और वहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनकी इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑस्ट्रिया के कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी के प्रमुख सेबास्टियन क्रूज दुनिया के सबसे युवा राजनेता बनने जा रहे हैं। हालांकि 31 साल के क्रूज की पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई, क्रूज नई गठबंधन सरकार बनाने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को 31% से अधिक वोट हासिल होंगे। हालांकि क्रूज ने कहा है कि वो अन्य पार्टियों से बात करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो फ्रीडम पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा,
Für echte Veränderung in diesem Land, der heutige Tag ist ein starker Auftrag für uns.
देश को बदलने का वक्त आ गया है और आज हमें जनता से एक मजबूत आदेश मिला है कि हम देश को बेहतरी के लिए बदलें। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनके कारण ये संभव हो सका। ये थे ऑस्ट्रिया के पीपल्स पार्टी के प्रमुख सेबास्टियन क्रूज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने परसों राजधानी मोगादिशु में हुए बम धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस बम धमाके में कम से कम 230 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। करीब एक दशक पहले कथित इस्लामी चरमपंथी समूह अल शबाब के विद्रोह शुरू करने के बाद से ये सोमालिया में हुआ सबसे बड़ा बम धमाका है। ये धमाका एक व्यस्त इलाके में हुआ और पास में मौजूद होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी दफ्तर इसकी चपेट में आ गए हैं। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि हॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को दिया गया फ्रांसीसी सम्मान लियोजोंद ऑनर उनसे वापस ले लिया जाएगा। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाए गए हैं। इससे पहले शनिवार को ऑस्कर देने वाली संस्था ने वाइनस्टीन को निष्कासित कर दिया था। अमरीकी अभिनेत्री रोज मैकगोवन ने वाइनस्टीन पर उनका बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस बीच एक अन्य महिला ने भी वाइनस्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इमैनुएल मैक्रों के शब्द, मैंने उन्हें दिया गया लीजियों डोनर सम्मान को रद्द करने के लिए कदम उठाए हैं। कम से कम चांसलर ऑफ द ऑर्डर को कहा है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि कोई विदेशी इस ऑर्डर का सदस्य नहीं होता, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के अपमानजनक काम के कारण हम इसे वापस ले सकते हैं और हमें इससे एक सीख ही मिलेगी। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आयरलैंड अटलांटिक की तरफ से अपनी ओर आ रहे तूफान ओफेलिया का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वालों का कहना है कि ओफेलिया बीते 5 दशक में आए देश का सबसे बड़ा तूफान हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि तूफान आज आयरलैंड से टकराएगा, जिस कारण 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। पूरे आयरलैंड में आज स्कूल बंद रहेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी ना हो तो वो यात्रा ना करें। कनाडा के पर्यटन मंत्री मार्क गर्नो ने कहा है कि क्यूबेक शहर में जब एक यात्री विमान उतरने की कोशिश कर रहा था, एक ड्रोन आकर उसके पंख से टकराया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते लगभग 30 दिनों में 4 बार गुजरात के दौरे पर जा चुके हैं और आज वो फिर गुजरात में होंगे। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री के इसी दौरे की वजह से गुजरात चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गईं, जबकि स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री आज करीब 7 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को गांधीनगर के नज़दीक गुजरात गौरव महासम्मेलन में संबोधित करेंगे। गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत 1 अक्टूबर को की गई थी और इसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने राज्य की 182 में से 149 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है और करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की है। सीधे चलते हैं गांधीनगर, बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागेतकर छारा के पास। रॉक्सी, सबसे पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री की रैली की खास क्या तैयारी की गई है और गुजरात गौरव यात्रा बीजेपी के लिए कैसी रही है अब तक?
जी, मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर प्रधानमंत्री 2 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से 3 बजे के आसपास कोबा गांव गांधीनगर में वे यहां पर सम्मेलन के लिए पहुंचेंगे। यहां पर बड़ी तैयारियां हुई है। यहां पर 7 लाख लोग जो गुजरात पूरे गुजरात से आने वाले हैं वो 50,128 बूथ से आएंगे। जो सिटिंग एरिया है वो करीब 4.5 लाख स्क्वायर मीटर का सिटिंग एरिया है और पार्किंग एरिया जो है वो करीब 7.5 लाख स्क्वायर मीटर का पार्किंग एरिया है। बहुत बड़ी जगह में ये कार्यक्रम होने वाला है और करीब 15,000 बसेस पार्क हो सके इतनी बड़ी जगह पर ये लोग यहाँ पर एक पूरा एक पार्क हो सके इस तरह से बस पार्क हो सके इस तरह से किया है। पूरा जो एरिया है वो जोन वाइज डिवाइड किया है। अहमदाबाद, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन अलग अलग विस्तार से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। पूरे जो कार्यक्रम का जो पंडाल है वहाँ पर 32 गेट हैं और 132 मेटल डिटेक्टर्स के साथ पूरी तरह से ये लोग सज्ज हैं आज 7 लाख लोगों को यहाँ पर वेलकम करने के लिए। और जब मोदी जी वहाँ पर उनको एड्रेस करेंगे, यहाँ पर आज गर्मी काफी ज्यादा होने की संभावना है तो करीब 10 लाख जितने वाटर पाउचेस और करीब 10 लाख छास जो पाउचेस हैं वो और पानी के टैंकर, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
क्या कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है इस रैली में?
जी देखिए, मोदी साहब यहाँ पर तो आज इलेक्शन कमीशन जो गुजरात इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करने वाले थे वो डेट डिक्लेयर नहीं की है, उसको लेकर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि हो सकता है कि ये जो गुजरात गौरव सम्मेलन जो है उसमें मोदी साहब कुछ डिक्लेयर करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनमें से कहीं कुछ संकेत तो है कि कुछ न कुछ आज मोदी साहब बड़ा कुछ अनाउंस करेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉक्सी इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री के आज के दौरे के क्या राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं और चुनाव की तारीख घोषित करने में चुनाव आयोग क्यों विलंब कर रहा है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने गुजरात में वरिष्ठ पत्रकार आरके मिश्रा से बात की।
भाजपा जो है गुजरात में खासी विकट समस्याओं का सामना कर रही है और उनके पास तुरप का इक्का सिर्फ एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। उन पर खासे तरीके से बैंक कर रहे हैं कि वो उनको इन परिस्थितियों में से निकाल सकें और रोज ही कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट सरकार कर रही है। ये सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री जी को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये सब चीजें हो नहीं पाएंगी, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर के संबोधित करें यहाँ लोगों को। ये भी माना जा रहा है कि खासे इनके जितने मुख्यमंत्री हैं यहाँ उतारे जाएंगे ओवर द नेक्स्ट, ये समझ लीजिए 15-20 दिन में। आदित्यनाथ जी अभी आकर के गए हैं, उनकी जो मीटिंगें हुई हैं उसको जिस तरह का प्रतिसाद मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। लिहाजा इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री जी को ये ज्यादा उतारे और वो कुछ ना कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करें कि जिससे शायद कुछ फर्क हो स्थिति में। स्थितियों में एक और स्थिति ये है कि भाई रूरल एरियाज और खास तौर से सेमी अर्बन एरियाज में इनका सपोर्ट बेस कमजोर है और बाकी कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके उतना कि ऑपोजिशन के वोट्स डिवाइड हों, उसकी इनकी पूरी कोशिशें चल रही हैं। उसी के रखते पाटीदारों का इन लोगों ने एक मीटिंग सरकार ने की थी, सरकार केस पटेलों के सामने, नेताओं के सामने उनके जो थे यूथ मूवमेंट के, उनके केस वापस खींच रही है।
कई बार और जो और प्रदेशों में भी चुनाव हुए हैं उनके उदाहरणों को भी देखें तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि लगता है कि भाजपा इस बार चुनौती का सामना कर रही है, एक माहौल भी भाजपा के खिलाफ बनता है, लेकिन अंत में विकल्पहीनता की वजह से आखिरकार वोटर को भाजपा का ही बटन दबाना पड़ जाता है। क्या वो भरोसा इस बार कांग्रेस जगाती हुई दिख रही है कि वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर दिख रही हो?
किसी भी किस्म का जो अगर एनालिसिस होता है वो इस बात पर होता है कि जमीन पर क्या दिख रहा है। जमीन पर ये दिख रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग जो हो रही है या उनकी जो यात्राएं निकल रही हैं उसको उतना प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि राहुल गांधी जब आए थे यहाँ तो उनको खासा सपोर्ट मिला है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कमजोर, खास तौर से रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में कमजोर नजर आ रही है।
आर के मिश्रा का कहना है कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर चुनाव की तारीख का ऐलान शायद नहीं किया जा रहा ताकि सरकार लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर सके और वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। और अब बात पंजाब की, जहां गुरदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को वोटों के लिहाज से बड़ी जीत मिली है। लोकसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ ने भाजपा अकाली दल के साझे उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया को 1,93,000 वोटों से मात दी। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे कांग्रेस खेमे के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने सुनील जाखड़ से बात की।
जो आर्थिक नीतियां और जिस किस्म की सांप्रदायिकता बीजेपी ने पिछले 3.5 साल में सलाई है, ये सिर्फ बदलाव गुरदासपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा। मेरा मानना है ये 2019 के लिए कांग्रेस की सरकार का बनने के लिए नींव पत्थर रखा गया है गुरदासपुर में। इस तरह से आप ध्यान करें, इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस का जिसमें काफी इसी किस्म के हालात थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिकमंगलूर से इलेक्शन लड़ा था और वहां से बदलाव चालू हुआ था। तो आज मैं देखता हूं कि गुरदासपुर भी चिकमंगलूर बनने जा रहा है।
तो आपको ऐसा भरोसा है देश के दूसरे हिस्सों में भी ये बदलाव नजर आने जा रहा है?
बिल्कुल होगा नहीं, मैं समझता हूँ प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आप देखिए जिस तरह से चाहे वो छोटे इलेक्शन हो पर तो यूनिवर्सिटीज लेवल पे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके बाद अगला कदम आज गुरदासपुर में हुआ और ये नतीजे आप देखेंगे ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि गुजरात में भी बीजेपी को चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे।
लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी नतीजे कुछ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे।
देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेडर क्लास, आज जो मिडिल क्लास, जिसकी दावेदारी बीजेपी हमेशा करती रही है, आज सबसे ज्यादा आक्रोश जो है उस वर्ग के अंदर है और वो कटिंग अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्री सब जगह कोई देखने को मिल रहा है।
ये टर्म आपका केवल 1.5 साल का होगा, आप चुनाव जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं, इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी कुछ ज्यादा बढ़ेंगी, क्या प्राथमिकताएं तय की हैं आपने?
आज भी यही बात हो रही थी कि जिस तरह से क्रिकेट के अंदर 5 दिन 5 डे सीरीज ना हो के 2020 का ये जो मैच है, कोशिश होगी कि इस थोड़े समय में जहाँ पे हमारे लोगों का जो उनकी समस्याएं है उस दहरी सरकार के कानों में पहुंचाई जाए, वहीं पे उन समस्याओं का समाधान करने के लिए रदर देन टेकिंग अ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड विल ट्राई टू सरकार के साथ मिलके उन समस्याओं का समाधान कराएं। और वहीं पे पंजाब सरकार, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां जो ऑलरेडी पंजाब को विकास पे आगे लेके जा रही हैं।
आप संसद के उस सदन में पहुंच रहे हैं सदस्य बनकर जिस सदन के अध्यक्ष कभी आपके पिताजी थे।
मैं समझता हूँ जहाँ पे उन्होंने जो आदर्श और जो मापदंड स्थापित किए थे, एक बहुत बड़ा वो ऊंचा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो जिम्मेवारी भी मैं समझता हूँ और वहीं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे उन्होंने आज से करीबन 37 साल पहले पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल भी उन्होंने निभाया था, उसके 35 साल बाद मुझे मौका मिला उसी कुर्सी पे बैठने का।
ये थे गुरदासपुर से सांसद चुने गए सुनील जाखड़, जिनका मानना है कि ये जीत 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भावी जीत का संकेत दे रही है। उनके दावों में कितना दम है ये आने वाले समय में पता चलेगा। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। मानसी क्या कहते हैं आज के अखबार?
पहली खबर आपको बता रही हूं जनसत्ता से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की सीमाएं अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और पड़ोसी देश चीन अब समझने लगा है कि भारत कमजोर देश नहीं रहा। इस खबर के अनुसार भारतीय लोधी महासभा के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने डोकलाम विवाद का जिक्र किया और कहा कि चीन से जुड़े विवाद सुलझा लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और वो दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अखबार में छपी एक और खबर के अनुसार चैट ऐप व्हाट्सएप पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने के लिए एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और ये मामला है महाराष्ट्र के अहमदनगर का। सिपाही रमेश शिंदे, जो पूर्व मंत्री बाला साहब थोराट के अंगरक्षक हैं, उनको निलंबित किया गया है। एक और खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, भाजपा नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि साल 2012 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए दबाव बनाया था। एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने पर चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को काम करने में दिक्कतें हुईं। अखबार कहता है कि 2012 में गुजरात चुनाव कराने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर वी संपत ने रूपानी के इस आरोप को खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक और खबर में कहा गया है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमरीकी अधिकारियों से कहा है कि H-1B वीज़ा के जरिए वहां जाने वाले भारतीय अवैध प्रवासी नहीं हैं बल्कि उच्च दर्जे के पेशेवर हैं। उन्होंने कहा है कि यहां आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ऐसे में अमरीकी सरकार को अपनी वीज़ा नीति के बारे में फैसला लेते समय विचार करना चाहिए। एक खबर और सुना दूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपी है, इस खबर के अनुसार भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की पुलिस का कहना है कि कश्मीर घाटी में चोटी काटने की घटनाओं के बीच कुछ लोग बदला लेने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं।
अखबारों की समीक्षा के लिए मानसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सॉलिड ट्रैक यानी मजबूत रास्ते पर है। IMF प्रमुख ने ये बात ऐसे समय में कही है जब भारत में विकास दर घटकर 5.7% हो गई है और आलोचक नोटबंदी और GST को इसकी वजह मान रहे हैं। हालांकि खुद IMF ने पिछले हफ्ते भारत के विकास के अनुमान को 0.5% घटा दिया था। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से संपर्क किया और समझना चाहा कि वे कौन से मानक हैं जिनके आधार पर IMF प्रमुख ये दावा कर रही हैं।
देखिए, ऐसा है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक होते हैं, उनके कोई अपने आंकड़े नहीं होते। वो जो आंकड़े लेते हैं वो सरकार के आंकड़े लेते हैं। तो वो सरकार के आंकड़ों पे जब जो निर्भर करेगा तो वो फिर कोई ऑल्टरनेटिव व्यू तो दे नहीं सकता, क्योंकि फिर तो 5.7% भी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छी रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि 6.1% तो थी, तो इसका मतलब कि थोड़ा ही बहुत स्लो डाउन हुआ है। अगर ऑल्टरनेट आंकड़े देखें कि जो संगठित क्षेत्र है उस पर कितना ज्यादा असर पड़ा है, वहां पे कितनी गिरावट आई है पिछले एक साल में, तब पता लगेगा कि रेट ऑफ ग्रोथ 5.7 नहीं है, वो करीब 1% के करीब रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है इस समय। तो IMF और वर्ल्ड बैंक और ADB कभी इंडिपेंडेंट आंकड़े नहीं देते हैं, क्योंकि वो कलेक्ट कर ही नहीं सकते इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए जो उनका विश्लेषण है वो रियलिटी है इकोनॉमी की, उस पर नहीं आधारित है।
तो क्या कोई वो अलग पैरामीटर्स नहीं है जिनके आधार पर ये कह रही है?
ना, कोई अलग पैरामीटर नहीं। और ये बात कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है, इसका कोई सरकार अभी अलग से सर्वे भी नहीं कर रही है। अगर अलग से सर्वे करती होती तो पता लगता कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था का 45% है उस पर कितना जबरदस्त धक्का लगा है। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो हमारे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उसमें सर्विसेज सेक्टर नहीं आते हैं, और सर्विसेज सेक्टर आज 60% है GDP का। तो उसमें जैसे स्कूल की फीस बढ़ गई, या आपका टेलीफोन का किराया बढ़ गया, या आपके और जो सर्विसेज हैं इंश्योरेंस है, बाकी इन सब चीजों में जब बढ़त हो जाती है तो वो उसमें नहीं आती है। तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी इस समय 6-7% से कम नहीं है, अगर इन सारी चीजों को देख लें। क्योंकि GST में जो सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ा है वो सर्विसेज पे बढ़ा है, 15% से 18% हो गया है, तो उसका असर तो सारी सर्विसेज से पड़ ही रहा है। तो इसलिए ये भी बात सही नहीं है कि इन्फ्लेशन कम है। फिस्कल डेफिसिट जरूर इस समय कम है क्योंकि सरकार खर्चे उसी प्रकार से कर रही है, पर लेकिन बाकी जो और है पैरामीटर्स वो उस पर इतना ठीक नहीं चल रहा है जो IMF कह रहा है, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है।
भारत में भी सरकार समर्थक बार बार कहते हैं कि नोटबंदी और GST ने फिलहाल भले ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद कर दी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घावधि में ये फायदेमंद साबित होगा। इस दलील में आपको कितना दम लगता है?
देखिए, इसमें दम कम है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात होती है कि इससे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तो ये बात बिल्कुल सही कि स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, जो 45% हमारा प्रोडक्शन करता है, अगर वहां पे कमी आई तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, जिससे डिमांड में कमी आएगी, उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो इसका लॉन्ग टर्म असर होगा।
ये थे अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कभी पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब केवल सिंध तक सिमट कर रह गई है। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की पार्टी क्यों आज इस हाल में पहुंच गई है, सुनिए पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान का ब्लॉग।
अगले साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वर्ष की हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के 70 वर्ष का इतिहास देखा जाए तो बस एक ही पार्टी दिखाई देती है, जिसके पॉलिटिकल वर्कर्स ने अयूब खान से लेके जियाउल हक तक हर फौजी तानाशाही को मुंह दिया, जेलें भरी, कोड़े खाए, फांसियों पे झूले, अधिनायक तंत्र के खिलाफ खुद को आग लगाई, पर इस मुल्क में राजनीति को ड्राइंग रूम से निकाल के सड़क और गली में आम आदमी के हाथ में ज़रूर दे दिया। यही एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिस पे आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो का साया है, क्योंकि दोनों ने एक आदर्श की खातिर जान दे दी। बाप फांसी पे झूल गया और बेटी को आतंकवाद ने छीन लिया। पीपल्स पार्टी 3 बार सत्ता में आई मगर 1 बार ही 5 वर्ष पूरे कर पाई, और फिर पीपल्स पार्टी के साथ वो हो गया जो कोई भी डिक्टेटर पूरी ताकत लगा के बिना कर सका, यानी पीपल्स पार्टी जो 1970 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी थी और जिसकी जड़ें पूरे मुल्क में यहाँ से वहाँ तक थीं, आज वो सिर्फ एक प्रांत यानी सिंध की पार्टी बन के रह गई है। आखिरी कील पिछले महीने लाहौर में कौमी असम्बली के उस चुनाव क्षेत्र में ठुक गई जो नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के कारण खाली हुआ था। नवाज शरीफ की पत्नी कुलसूम नवाज 60,000 से अधिक वोट लेके जीत गईं। इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने 48,000 वोट लिए और पीपल्स पार्टी को बस 1400 वोट मिले। सिंध में पीपल्स पार्टी पिछले 9 वर्ष से इसलिए हुकूमत कर रही है क्योंकि उसे चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी सियासी ताकत नहीं। इसका असर ये हुआ है कि नाम तो भुट्टो का है पर पार्टी का भुट्टो के अवाम दोस्त नज़रिए से दूर दूर का संबंध नहीं, दिमाग 7वें आसमान पर है। पार्टी चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने 1 महीने पहले सिंध में एक चुनाव रैली में तकरीर करते हुए कहा, शहदाद कोट के वासियों कान खोल के सुन लो, एक ही चुनाव चिन्ह है यानी तीर, सारे तमाशे बंद करो और सिर्फ तीर को वोट दो। अगर किसी के सर में कोई और कीड़ा कुल बुला रहा है तो अपने दिमाग से फौरन निकाल दे। सिंध असम्बली के एक मेंबर पुरहान जांडियों ने अपने गांव में अवाम की भीड़ से कहा, तुम कौन सा एहसान करते हो हम पे, बस 5 साल में 1 बार वोट ही तो देते हो। सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपने गाँव वालों से 2 दिन पहले कहा, तुम वोट देने ना देने की मुझसे बात ना करो, मैं तुम्हारे वोटों पे पेशाब करता हूँ। एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की पार्टी ऐसे लोगों के कब्ज़े में चली जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। नतीजा ये है कि अब पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं बची जो खुद को चारों सूबों की पार्टी कह सके। जब अवामी सियासत के वारिसों का ये विजन हो तो फिर किसी भी वर्दी या बिना वर्दी डिक्टेटर को जमहूरियत दुश्मनी का इल्ज़ाम देना बनता नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हालत की समीक्षा कर रहे थे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान। एशिया कप हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को दी मात और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के लिए क्या है मुश्किल, ये सब जानेंगे आज हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
It's India and Pakistan. It's the Asia Cup 2017. It's the final game in Pool A.
ढाका में खेले जा रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बेहद आसानी से 3-1 से बात दी। पूल ए के इस मुकाबले में भारत के चिंगलेसाना ने खेल के 17वें मिनट में मैदानी गोल किया और इस गोल के बाद पाकिस्तान की टीम दबाव में आती चली गई। हालांकि दूसरे गोल के लिए भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। दूसरा गोल 44वें मिनट में रमनदीप सिंह की मदद से आया, जब उन्होंने रक्षा पंक्ति को छकाते हुए पाकिस्तान का तख्ता खड़खड़ाया। तीसरा गोल हरमनप्रीत सिंह ने अगले ही मिनट यानी 45वें मिनट में किया। पाकिस्तान के लिए इकलौता गोल 49वें मिनट में शान अली ने किया। इस जीत के साथ ही भारत शुरुआती दौर में अपने पूल में 3 जीत और 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। वैसे कल ही भारत के ही पूल के एक अन्य मैच में जापान ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। और अब समीक्षा, क्या आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को आराम दिया जा रहा है या फिर वो टीम में अपनी जगह ही खो चुके हैं? बीते शनिवार को जब बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया तो पहले तो लगा कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन जब थोड़ा विचार किया तो माथा ठनका कि आखिरकार आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसी कामयाब जोड़ी को लगातार बाहर रखा जा रहा है। क्या वो टीम में अपनी जगह खो चुके हैं? पिछले काफी समय से भारत के मैचों की कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा बीसीसीआई की मंशा को भांपकर कहते हैं,
ये बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जगह वो अपनी खो चुके हैं। अब उस जगह को अगर वापस पाना है तो उसके अंदर 2 चीजों का होना जरूरी है। एक तो जो खेल रहे हैं उनका प्रदर्शन थोड़ा खराब हो, क्योंकि अगर वो अच्छा करते रहेंगे तो किसी और की आपको कमी महसूस होगी ही नहीं, जो कि हो नहीं रही है पिछले कुछ समय से, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ के वनडेज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडेज और T20 हो, आपको कभी मिस ही नहीं हुए, आपने उनकी कमी महसूस ही नहीं की, तो फिर आप उनकी तरफ क्यों रुख करेंगे?
वैसे जब आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर कर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मौका दिया गया तो पहले तो लगा कि शायद अश्विन और जडेजा को आराम दिया गया है, लेकिन लगातार तीसरी सीरीज में अगर ये जोड़ी बाहर है तो फिर आराम कैसा? आकाश चोपड़ा ही इस यक्ष प्रश्न का जवाब देते हैं।
मुझे लगता नहीं है कि उनको आराम दिया गया था और उनको आजमाया गया था। पिछले कुछ 1.5 साल में कहानी ये पनपी है, अंत में ये पूरा रंग में आई है, क्योंकि अगर हम पिछला 1.5 साल देखें तो रविंद्र जाडेजा का बॉलिंग का एवरेज जो है वो 60 का है वनडे क्रिकेट में, अश्विन का 40 का है। तो फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों खिलाड़ी विकेट नहीं चटका पाए और भारत ने 2-3 बार 300-300 से ज्यादा का रन का स्कोर बनाने दिया अपने विपक्षी टीम को, तो वहां पर एहसास हुआ था कप्तान कोहली को, टीम मैनेजमेंट को, कि ये फिंगर स्पिनर से काम चल नहीं रहा है तो फिर हमें रिस्ट स्पिनर ढूंढने पड़ेंगे। और रिस्ट स्पिनर्स उस वजह से कुलदीप को और युजवेंद्र चहल को चांस दिया गया। अब उसको कहने के लिए कह सकते हैं कि हम आजमा रहे थे, किसी को विश्राम दे रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो विश्राम दिया गया था या आजमाया गया था।
बीसीसीआई की चयन समिति कब क्या करे समझ से परे है। शायद इसी को समझते हुए आशीष नेहरा ने भी क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर ही लिया। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की उम्र खैर अभी संन्यास लेने की तो नहीं है, लेकिन अब यो-यो टेस्ट पास करने के बाद भी उनकी वापसी एक दिवसीय क्रिकेट में तो मुश्किल ही लगती है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात गौरव यात्रा में शिरकत करने गुजरात पहुंच रहे हैं। वहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑस्ट्रिया की कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी के प्रमुख सेबेस्टियन कुर्ज दुनिया के सबसे युवा राजनेता बनने जा रहे हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने परसों राजधानी मोगादिशु में हुए बम धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस बम धमाके में कम से कम 230 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को दिया गया फ्रांसीसी सम्मान लिजियोंद ऑनर उनसे वापस ले लिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर यह प्रसारण आप तक पहुँचाया विभुराज मागत ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।